Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग अपनी नकारात्मक वृत्तियों से दूसरों के अंदर भी नकारात्मकता पैदा कर देते हैं, उनके जीवन में भी जहर घोल देते हैं। एक हॉस्पिटल के बाहर बहुत सुंदर चार पंक्तियाँ लिखी हुई थी। पहली लाइन लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक चूहे ने काटा था, एक दिन तक उसका ट्रीटमेंट किया गया और वो ठीक होकर चला गया। दूसरी पंक्ति लिखी हुई थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक बिल्ली ने काटा था, 5 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट की गई, ठीक होकर चला गया। तीसरी लाइन थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे कुत्ते ने काटा था, 15 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट की गई, यहाँ पे ठीक होकर चला गया। चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम सब के काम की है। चौथी लाइन थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है, अर्थात ठीक होके गया ही नहीं है। तो मित्रों, व्यक्ति मुंह से नहीं काटता, अपने विचारों से काटता है, हमारे अंदर नकारात्मकता भर देता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, अर्थात नकारात्मक बातों से हमें अच्छाई के मार्ग पे चलने नहीं देता। तो हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे ह्यूमन बाइट से, जिससे हमारे जीवन में पतन हो या जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर ना बढ़ पाए। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी, ऐसे जो चारों तरफ ये नकारात्मक बातों से हमारे जीवन में नकारात्मकता घोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और ऐसे लोगों से बचें कैसे?
ऐसे लोगों के लिए तो वही कहेंगे जो कहना चाहिए कि ये मनुष्य के लिए शुभचिंतक नहीं है
जी।
जहर घोलते हैं जीवन में और कहीं ना कहीं उनके मन में कोई निगेटिव वृत्ति बनी रहती है दूसरों को कष्ट पहुंचाने की या दूसरों से ईर्ष्या के कारण उन्हें गिराने की
जी।
लेकिन इससे बचने का साधन अपने को पॉजिटिव फीलिंग्स में रखना, अपने को बहुत अच्छे स्वमान में रखना, क्योंकि जितने पावरफुल थॉट्स हम क्रिएट करते हैं हमारे चारों ओर एक पावरफुल ओरा, पावरफुल प्रभा मंडल क्रिएट हो जाता है और वो ऐसा है जैसे निगेटिविटी के तीर आ रहे हों और वो उससे टकरा के नष्ट हो रहे हों। तो सबसे सुंदर तरीका ये है, हमें अपने चित्त को शुभ भावनाओं से रखना, जिसके लिए बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कोई तुम्हें चाहे 1000 बार बद्दुआएं दे, तुम उसे दुआएं देते चलो, तुम्हारी दुआओं का प्रभाव उसकी बद्दुआओं के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो हमारी शुभ भावनाओं में सचमुच पावर है। और ओरा क्रिएट करना, दुआएं देते रहना, और तीसरी बात है अपने को योग युक्त बनाकर रखना। जब हम योग करते हैं तो परमात्म इफेक्ट हमारे ऊपर सदा रहता है। देखो, जैसे किसी के शब्दों का हम पे इफेक्ट हो जाता है ना, किसी घटना का हम पे इफेक्ट हो जाता है, हम सब इसके इफेक्ट से अच्छी तरह
परिचित
अनुभव कर चुके हैं इसका। ऐसे ही परमात्म इफेक्ट बहुत सुखद, बहुत पावरफुल,
एक नया
बहुत भरपूर, बहुत भरपूर। तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं, जैसे पीछे चली जाती हैं, और वास्तव में धीरे धीरे तो ये होता है कि जो ऐसे शब्द बोलने वाले या ऐसी फीलिंग्स रखने वाले उनको ही विवश होकर छोड़ देना पड़ता है।
लेकिन बहुत अच्छी बात है भ्राता जी कि यदि सामने वाला कोई हम पे ऐसी नकारात्मकता की बरसात कर रहा हो, ऐसे में हम सुरक्षित रहें और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें, बहुत बहुत मतलब बड़ी साधना है, मैं तो ये कहूँगा।
हाँ, इसमें एक चीज और थोड़ी सी कि अपने को थोड़ा हमें विवेक युक्त रखना है और बहुत सेंसिटिव नहीं बना देना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा, मैंने इतने अच्छे काम किए, इन्हें मदद की, मैं, मेरे में कोई ऐब नहीं है, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करता, फिर भी लोग बोलते रहते हैं। ये सुन के जो व्यक्ति डाउन हो जाता है, मूड ऑफ कर लेता है, इसके प्रभाव में आ जाता है, उस पर तो इन चीज़ों का बहुत बैड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो ये सोचता है, इट्स कॉमन, ये तो संसार है, हजारों लोग रह रहे हैं हर एक के संपर्क में, कोई कैसा है कोई कैसा है, ये तो संसार में लोग किया ही करते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लिया और बहुत लाइट हो गए और अपने स्वमान में रहे, तो वो इसको अपने ब्रेन में प्रवेश करने ही नहीं देते हैं। ये जो हल्कापन है ये इतनी सुंदर चीज़ है कि वो चीज़ें साथ साथ ही हमारे बाहरी टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आउट हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है।
और शायद भगवान ने दो कान भी तो इसीलिए दिए हैं कि मान लो यदि कोई ऐसी बातें आ भी गई एक कान से तो हम दूसरे कान से उसे निकाल दें, अपने अंदर प्रवेश ना होने दें।
लेकिन कभी कभी लोग उल्टा कर लेते, अच्छी बातों को भी सुन के निकाल देते और बुरी बातों को सुन के अंदर ही दोनों से सुन लेते हैं और अंदर पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जो बुरी बातें हैं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं उनको इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, और जो अच्छी बातें दोनों से सुनो और ब्रेन में संभालो, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहेगा।
बहुत अच्छा प्रताप जी, ये जो परमात्मा इफेक्ट की आपने बात कही है मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये शब्द, हमेशा उनका ही प्रभाव हमारे ऊपर बना रहे, संसार की बातों का हम पे प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या करें हमारे भाई?
देखिये, थोड़ा सा सवेरे से ही अपने को इस परमात्मा इफेक्ट में ले आना चाहिए। जो लोग बहुत देर से उठते हैं वो समझो इस इफेक्ट को मिस कर देते हैं, लेकिन सवेरे उठकर परमात्म साथ की गुड फीलिंग कर लेना कि ईश्वरीय खुमारी में आ जाना, ईश्वरीय नशे में आ जाना, भगवान मेरा साथी है, मैं भी स्वयं बहुत शक्तिशाली हूँ और जिसे स्वयं भगवान साथ दे रहा हो उसको तो भला डरने की क्या बात है, जिसे स्वयं भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसे कोई क्या रोकेगा, जिसका भाग्य निर्माता स्वयं भाग्य विधाता हो उसके भाग्य को कोई क्या बिगाड़ेगा। ये कुछ नशे के सुंदर संकल्प, जिनको संसार नहीं रोक सका उसे भला इनकी छोटी बातें क्या रोकेंगी, जिसके साथ भगवान हो उसे ये तूफान भला क्या करेंगे। ऐसे नशे के खुमारी के कुछ संकल्प मनुष्य को अपने अंदर क्रिएट कर लेने चाहिए, तो देखो ब्रेन भी एनर्जेटिक हो जाएगा, उसमें नई क्षमताएं आ जाएंगी, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी योग्यताएं टैलेंट्स छुपे हुए हैं, वो दबे हुए हैं, कहीं ब्लॉक्ड हैं, कहीं उनके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, इन संकल्पों से वो सब हट जाती हैं और नई चीजें इमर्ज हो जाती हैं। तो एक ये कर लेना चाहिए। दूसरा, परमात्मा इफेक्ट के लिए रोज ईश्वरीय महावाक्यों का आनंद लेना। आजकल जब हम ये बात कहते हैं तो लोगों की एक थोड़ी एक्सक्यूज इसे कहीं आता है कि काम बहुत है, सवेरे बच्चों को भेजना है स्कूल में, उन्हें नाश्ता देना है, या अपने पति को या भाइयों को ऑफिस के लिए तैयार करके देना है, टिफ़न देना है, तो समय नहीं मिलता हमें, तो सवेरे का टाइम इस कारोबार में गुजर जाता है और वही टाइम तो बहुत सुंदर है। तो इसमें ये कर लेना चाहिए कि जिन्हें मुरली कहते हैं ईश्वरीय महावाक, वो इससे पहले ही 15 मिनट अवश्य पढ़ लेनी चाहिए, और जब इस कामकाज में मनुष्य बिजी रहे तैयारी में तो कुछ ना कुछ अंदर प्रैक्टिस चलती रहे, यही सब मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, उसकी किरणें मेरे पर पड़ रही हैं, मेरा भाग्य तो बहुत सुंदर है, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, वाह बाबा तुम्हें पाकर तो मैं बहुत सुखी हो गया, तुम्हें पाकर तो मैंने सब कुछ पा लिया। तो ईश्वरीय महावाक्य पढ़ने से ये चीज़ें जागृत रहेंगी। बस ये होगा, स्वयं को सवेरे सवेरे परमात्म प्रभाव में ले आना, और सारा दिन में भी अगर 2-4 बार भी बीच बीच में इसको याद कर लिया जाए तो मनुष्य का मन भी बहुत बैलेंस में रहेगा। जो कामकाज के कारण कहीं उसे इरिटेशन हो जाता है, कहीं अब बहुत लोग एक साथ ही आ गए, उल्टी सुलटी कोई बात भी कर रहा है तो टेंशन भी हो जाती है। डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ, वही बात पेशेंट बार बार पूछ रहा है, वो उनको कह भी रहे हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, तुम्हें बता नहीं दिया। अगर परमात्म प्रभाव में हम इस तरह रहेंगे तो हम एक बहुत सुंदर बैलेंस मेंटेन कर सकेंगे, और ये जो इरिटेशन जिसके कारण तो हैं, वो कारण होते हुए भी हम अपने मूड को बिल्कुल एक रस रख सकेंगे। इस तरह परमात्म प्रभाव के अंदर रहने का हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास अवश्य करें।
बहुत ही सुंदर बात भ्राता जी आपने छेड़ी है, और सचमुच इस प्रभाव में यदि हम रहें तो लगता है कि कोई समस्या रहेगी ही नहीं। जो परमात्मा छत्र छाया में रहता हो, जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ हो और निरंतर उसकी स्मृति हो, तो मुझे लगता है कि समस्याएं तो बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी या बिल्कुल तिनके की तरह हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, ऐसा लगता है। भ्राता जी आज के जो मेल हमारे, मैं उनकी ओर आपको लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है, एक बहन लिखती हैं कि ओम शांति सूरज भाई जी, मेरे रिलेटिव एक भाई हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए? वैसे रेगुलर मुरली पढ़ते हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते सेंटर जाने के लिए, तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए ताकि उनका सिगरेट छोड़
जाए? सिगरेट वो पीते हैं करना हाँ, इनको
लेकिन यही तो शुभ भावना रहता है जी, ये समाधान परिवार की बहुत बड़ी विशेषता है।
परिवार के लिए तो हर एक को अच्छी फीलिंग रहती है, और उसमें भी वो व्यक्ति जो सिगरेट छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पा रहा है, उसके लिए सहज हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पीते हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया है हमें ये पीना है और ये छूटेगी नहीं, अब मैं 6 फुट का इंसान इस 3 इंच की सिगरेट के अधीन हो गया हूँ। वैसे मनुष्य सारे संसार को वश कर लेना चाहता है और वैसे एक 3 इंच की सिगरेट के वश रहता है स्वयं, तो उनका तो हाल कोई क्या कहें बयां नहीं किया जा सकता। पर वो व्यक्ति जो सिगरेट पीने की अपनी आदत से मजबूर हो गया है और चाहता है मैं इससे मुक्त हो जाऊं, और जिसने ज्ञान भी लिया है, हालांकि ज्ञान लेने वाले बहुत सारे, मैं कहूँगा 95% लोग तुरंत इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, केवल 5% के ये केसेज ऐसे सामने आते हैं जो कहते हैं हमसे छूट नहीं पा रहे। कभी कभी ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, नहीं तो सब यही कहते हैं जिस दिन से बाबा के पास आए सब ये बुरी आदतें छूट गई। तो एक तो इन्हें जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन हमारे यहाँ आबू में मिलती हैं, हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स देते हैं, उसका सेवन कराना चाहिए जो भी आए माउंट आबू में और यहाँ के हॉस्पिटल से होम्योपैथी डिपार्टमेंट से। सिगरेट छुड़ाने की खास, शराब छुड़ाने की अलग, तंबाकू छुड़ाने की अलग, लेकिन सिगरेट छुड़ाने की अलग गोली वो देते हैं। तो ये एक तलब है ना, ये एक इच्छा है, तो वो उस तलब को समाप्त करेगी। एक तो ये प्रयोग इनको करना चाहिए। दूसरा जो ये बहन इनकी बहुत अच्छा प्रयोग कर सकती है कि सवेरे 5 बजे, ये टाइम हम इसलिए कहते हैं कि प्रकृति शांत होती है, मनुष्य का मन भी शांत होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, मनुष्य के अपने विचार भी उस समय सुंदर होते हैं। कोई भी व्यक्ति उस टाइम उठा हो तो उसके मन में पाप के विचार नहीं आ सकते, सुंदर विचार ही आएंगे। तो 5 बजे ये उनको वाइब्रेशंस दे, 10 मिनट समझो इनको डिवोट करना है उनके लिए, 10 मिनट योग के सुंदर वाइब्रेशंस उसे दें और याद दिलाएं कुछ बातें, तुम देव कुल के हो, ये सिगरेट, जब तुम देवता थे तो क्या तुम सिगरेट पीते थे? अपने उस देव स्वरूप को जरा इमर्ज करो और देखो मेरे हाथ में सिगरेट है कैसा लगेगा, घृणा आ जाएगी सिगरेट से। तो इन्हें स्मृति दिलाएं सवेरे 5 बजे, निश्चित रूप से सोए होंगे याद आएगा तो जागृति आएगी, हो मैं परम पवित्र आत्मा देव कुल का एक भाती और ये सिगरेट के बस हो गया। दूसरी चीज इनको इनको याद दिलाना है कि तुम भगवान के बच्चे हो, सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, ये सिगरेट तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बड़े बड़े व्यसनों को बड़े बड़े विकारों को छोड़ सकते हो, छोड़ भी दिए होंगे उसने। जिसने काम को जीत लिया उसको सिगरेट को छोड़ना क्या बड़ी बात है, जिसने क्रोध को जीत लिया उसके लिए सिगरेट छोड़ना एक खेल है। केवल दृढ़ इच्छा की जरूरत है, बात केवल दृढ़ इच्छा की है। जब मनुष्य दृढ़ इच्छा रख लेता है तो तलब लगने पर वो और कुछ, ये आजकल सुगंधित कई चीज़ें मिलती हैं मुखवास जिसे कहते हैं, वो खाएगा तो उस टाइम को वो पास करेगा किसी भी तरह, और नहीं तो थोड़ी चाय पी लेगा, वो तलब हट जाए। लेकिन जिसको करना है, दृढ़ इच्छा है, वो इसे छोड़ सकता है। तो इस बहन को अपने भाई के लिए ये 2 बातें रोज सवेरे 5 बजे याद दिलानी है, 10 मिनट योगदान करना है, तो निश्चित रूप से उसमें आत्म जागृति आती जाएगी। तीसरी बात भी याद दिलाएं कि तुम तो भगवान के बच्चे हो, अब उसका आदेश है इन व्यसनों से तुम मुक्त हो जाओ। हालांकि इन व्यसनों के जो नुकसान हैं वो भी हमारे लोग सुनाते हैं और वो उन्हें पता होगा, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, ये फीलिंग आने पर मनुष्य के अंदर एक शुद्धि जागृत होती है, एक प्योरिटी इमर्ज हो जाती है और उससे इन चीजों के प्रति घृणा होने लगती है और ये छूट जाती है।
बिल्कुल, मैं किसी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति का एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रताप जी, उन्होंने भी कहा, इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा कि केवल इसे छोड़ने के लिए एक ही चीज ने मदद की कि मैंने देखा कि इतने सारे इसके नुकसान है, जब भी मैं इसके नुकसान को देख लेता हूँ तो लगता है कि नहीं भाई ये चीज मुझे नहीं लेनी। जिन्हें जीने की इच्छा हो वो निश्चित रूप से
उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये मेघा जी हैं और ये कहती हैं, आई एम 28 ईयर्स अनमैरिड गर्ल, मैं ब्रह्मा कुमारी से के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, आई अटेंड मुरली क्लास डेली, आई एम इन लिटिल बिट कन्फ्यूजन। एक तरफ तो मैं बाबा से दूर नहीं होना चाहती, बाबा का सपूत बच्चा बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ विचार आता है कि ऐसे अकेले जीवन कब तक चलेगा। भले ही बाबा साथी हैं मगर जीवन में कोई स्थूल साथी भी तो जरूर चाहिए। तो मन में एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि मैं क्या करूं।
एक कन्या का ये सोचना लाजमी है और माँ बाप भी यही सोचते हैं कि हमारी लड़की भला अकेले कैसे जिएगी। दुनिया बहुत गंदी है आजकल, अकेले रहना, लोगों की बुरी दृष्टि, गुंडे लोग आ जाते हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। परंतु मैं अपनी इन बहनों को जो बहुत पवित्र हैं याद दिलाना चाहूँगा कि देखिए जो लोग मैरिज कर चुके हैं, जिनको साथी मिल गए, सोच लें वो कितने सुखी हैं। आज ही मेरे पास 5 फोन आए सवेर सवेर, लगातार वही फोन आते रहे कि हमें घर से निकाल दिया है, सास ने दहेज की बहुत मांग की है, अब घर भेज दिया है, दहेज लेकर आओ नहीं तो यहाँ आना नहीं। दूसरे ने कहा मेरा पति बहुत शराबी है, अभी छोटी आयु के ही है, 28-30 साल की, मेरा पति बहुत शराबी है, मेरे को मारपीट करता है, मैं अपने घर आ गई हूँ, क्या करूँ। अब इधर माँ बाप और भाई कह रहे हैं वापिस जाओ, वही तुम्हारा घर है। मेरी रूह कांपती है वहाँ जाते हुए, उसका रात को आना, आंखें लाल और शराब पी के आना और मुझे गाली गलौज और मारपीट करना, तेरी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, उनको ये कर। गाली देने वालों का तो कोई, उनको तो मैनर्स ही नहीं होते। तीसरा फोन आया कि बस बिना कारण उसका किसी और से है और वो उसने मुझे कहा तुम घर से निकल जाओ, मेरा कोई तुमसे लेना देना नहीं है, मेरे साथ तुम दुखी रहोगी, अब मैं क्या करूं। अब देखिए साथी हैं, ये एक की कहानी नहीं, ये लाखों की कहानी है। साथी हैं लेकिन सुख नहीं है। इसलिए हम इन अपनी पवित्र बहनों को राय देना चाहते हैं। निसंदेह अकेला रहना थोड़ा कष्टदायी तो होगा, लेकिन जहाँ परमात्म साथ हो, जहाँ भगवान जिम्मेदारी ले रहा हो, जैसे शादी की उसने जिम्मेदारी तो ली थी लेकिन निभाता कोई नहीं है, भगवान जिम्मेदारी लेता है और सदा निभाता है, उसमें संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। लेकिन केवल इस संकल्प से काम नहीं चलेगा कि भगवान साथी है। अगर ये पवित्र जीवन जीने का एक बहुत बड़ा निर्णय लेती हैं तो इन्हें योगी भी बनना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग पवित्र जीवन, बाबा का बनकर जीवन बिताने का संकल्प और अपना सेवा भी करेंगे बाबा की, ये सब संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये संकल्प नहीं करते कि हमें योगी बनना है। तो इससे क्या नुकसान होता है कि अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक अभाव, किसी की तलाश, किसी साथी को ढूंढने की इच्छा बराबर बनी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो अकेला नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो योगयुक्त हो जाए तो उसे सोचने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्वयं भगवान सोचेंगे, वो साथ निभाएंगे, वो उसे साथ देंगे, उसको साथ है ये उनकी ओर से गुड फीलिंग आएगी और तब ये समस्या समाप्त हो जाएगी कि मुझे कोई स्थूल साथी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि जब भगवान मिला है, जन्म जन्म स्थूल साथियों के साथ रहे हैं, सुख दुख दोनों देखे, कहीं सुख भी मिला तो कहीं बहुत परेशानी भी मिली है। हम ये नहीं कहेंगे सभी का जीवन ऐसा है, बहुत अपने गृहस्थ जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा श्राप भी बनकर आ गया है। अब एक बच्ची है, उसको लेकर लड़की निकल गई है, उधर भाई भी साथ तो नहीं देंगे ना, वो कहेंगे अपने घर जाओ, बेचारी उदास निराश बच्ची के लिए जी रही है, छोटी मोटी नौकरी कर रही है, भगवान का हाथ पकड़ लिया, अब उसके साथ का आनंद लें तो इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और फिर अगले कल्प का भाग्य निर्माण करना है। बात कोई 5-10 साल की नहीं है, अगला कल्प, एक लंबा चौड़ा भाग्य हमारे सामने खड़ा है, हमारा स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, हमें उसका निर्माण करना है। तो बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर,
या इन्हें लगता होगा कि शायद हम वैसा नहीं रह सकते, अब ये घर में रहना चाहते हैं तो शायद घर वालों का भी यदि वैसा सपोर्ट ना मिल रहा हो, और आगे चल के जैसे उनके घर में और शादी आदि होंगी और ये घर में अकेले रहेंगे, तो इन सभी स्थितियों को देख के शायद ये एक मन में विचार आ जाता हो कि शायद हमारा भी एक परिवार हो तो हम वहाँ रहें, सुरक्षित रहें। तो ऐसा जो विचार आ जाता है, ऐसे में फिर इन्हें क्या करना चाहिए?
बिल्कुल ये बात ठीक है, और ये विचार आता ही है मनुष्य को, क्योंकि वो मनुष्य हैं और वो अपने चारों ओर बहुत कुछ देखते हैं। आज उनके भाई उन्हें प्यार करते हैं, कल जब उनकी शादी हो जाएगी वो उन्हें प्यार नहीं करेंगे, वो उन्हें दुत्कारेंगे, कहेंगे निकल जाओ घर से, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा घर है। उनकी जो भाभियाँ आएंगी वो भी उनसे अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आजकल ये हो रहा है, तो वो ये सब भी देखती हैं। इसलिए मनुष्य बाध्य हो जाता है ऐसा विचार करने के लिए, और वो ये भी देखती है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन लाइफ है
जी,
और स्पिरिचुअल लेवल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाना परम आवश्यक है। जैसे रामायण में है ना, लक्ष्मण ने सीता के चारों ओर एक रेखा खींची थी, इससे बाहर न जाना, इससे बाहर जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो बाहर गई तो रावण ने उसका हरण कर लिया। तो ये मर्यादाओं की लाइन हमें अपने चारों ओर खींचनी पड़ती है। देखिए, एक मर्यादित लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ, वास्तव में इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ। तब हमारी मर्यादाएं, हमारी प्योरिटी हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाती हैं, लक्ष्मण रेखा की तरह। इसलिए जिसको कुछ करना है उसको कुछ डिसिप्लिन्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। हमारे यहाँ भारत की कल्चर ऐसी थी कि कन्याओं को बहुत अच्छे डिसिप्लिन माताएं बचपन से ही सिखा देती थी। अब वो एजुकेशन का दूसरा रूप हो गया तो वो सब मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, न कोई किसी को सिखा रहा, ना कोई किसी की मान रहा। लेकिन एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन में महान स्पिरिचुअल टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ को तो अपनाना पड़ेगा, भले वो थोड़ी कठिन भी हो। इनको तो हम कठिनाई तब मानते हैं जब हमारी अपनी कुछ दूसरी इच्छाएं होती हैं। अगर हम इनको ही अपना मान लें कि हमारी उन्नति का यही मार्ग है तो कितना अच्छा होगा। मान लो किसी को ये कहा जाए कि तुम 10 बजे के बाद घर से बाहर न निकलना, बाहर बहुत नुकसान होता है, आतंकवादी घूमते हैं, अपहरणकर्ता घूमते हैं, चोर लुटेरे घूमते हैं। अगर वो इसको स्वीकार कर ले कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है, भाई बाहर निकलना इस टाइम अच्छा नहीं रहेगा, तो बहुत सुखी। और वो मान लो सोचे ये क्या बंधन, मुझे तो क्लब में 10:30 बजे ही जाना है, मुझे तो पिक्चर देखने वहाँ जाना ही है, और कोई केस हो जाए तो उसके लिए वो भारी पड़ जाएगा ना। तो डिसिप्लिन को, मर्यादाओं को स्वीकार कर लेना, वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। जो मार्ग हमने चुना है उस पर उनका होना परम हितकारी है, ये मानकर अगर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वास्तव में ये हमें भारी नहीं लगेगी और तब बहुत इजी हो जाएगा।
बिल्कुल, मतलब ये जो मर्यादाएं हैं उनसे जो होने वाले लाभ हैं, शायद उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मर्यादाओं में कितना आनंद है, कितना सुकून है या कितनी उन्नति है। शायद उसकी ओर ध्यान ना दे के हम ये देखते हैं कि ये कितने कठिन है, ऐसा रहना शायद सहज या संभव नहीं है, तब जाके परेशानी होती है। प्रति जी, एक विशेष बात और, जो कन्याएं हैं, अब मान लीजिए दोनों प्रकार से है कि एक तरफ शादी का राह है और एक तरफ ये है कि पवित्र जीवन जीना है, लेकिन अब यदि एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती भी चली जा रही है और जैसे आपने कहा कि घर में यदि रहें तो नियमों में रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि इस प्रकार से वो नहीं कर पा रही हैं, यदि लगता है कि नहीं मन में विकारों का ही वेग बहुत ज़्यादा है या परिवार का भी दबाव है, मान लीजिए मन में ये भी है कि हम पवित्र रहें लेकिन परिवार का दबाव है कि नहीं विवाह करो, ऐसे भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ऐसी हमारी जो बहनें हैं वो क्या करें?
देखिए, इसमें ये है, अगर उनके अंदर वासनाओं का वेग बहुत ज्यादा है लेकिन वो सुन के तो कह रही हैं कि पवित्र बनना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनके अंदर वो शक्ति है नहीं, इसलिए वो डर रही हैं थोड़ी कि इधर चलें ना चल पाए, इसलिए तो शादी कर लेना अच्छा है। जो योगी नहीं बन पाती, जो अपने काम क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ नहीं है, जो पहले से ही कन्फ्यूज्ड हैं कि हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, पवित्र मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होगा नहीं होगा, या हमारा भविष्य कैसा चलेगा, जिनमें भय है उन्हें ये मार्ग छोड़ के मैरिज का मार्ग अपनाना ही चाहिए। फिर थोड़े ही समय के बाद उनमें जब आत्म जागृति आएगी तब दोनों मिलकर पवित्रता का मार्ग अपनाएंगे तो कल्याणकारी रहेगा।
और ऐसी बहनें प्रता जी जो रहना चाहती हैं पूरी तरह से, लेकिन परिवार वालों की तरफ से एक दबाव है कि नहीं तुम्हें गृहस्थ मार्ग में ही चलना है, तो ऐसी जो बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम पवित्र जीवन जिएं, अपने जीवन को भी सेवा कार्यों में लगाएं, लेकिन अब परिवार वालों के लिए भी एक सामाजिक दायरे होते हैं, बहुत सारे नियम मर्यादाएं होती हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारे परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो एक इस प्रकार का जो दबाव है पेरेंट्स की ओर से, तो ये बहनें,
हाँ देखिए दबाव भी रहता है, और जैसे मैंने कहा पेरेंट्स का ये सब सोचना भी नेचुरल है क्योंकि वो संसार का हाल देख रहे हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं कल कुछ हो न जाए और हमारे परिवार की कहीं बदनामी न हो जाए। लेकिन मैं इसमें हमेशा एक बात कहता हूँ और देखता हूँ, आजकल लड़के लड़कियां गलत काम करने में माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, धमकी दे देते हैं अपने माँ बाप को, ऐसे केसेस बहुत सामने आते हैं। तो ये जो पवित्रता का मार्ग है जिसमें स्वयं भगवान हमारा साथी बन जाता है, उस पर चलने में हमें थोड़ी तो दृढ़ता अपनानी पड़ेगी। अगर हम हर बात को देखेंगे, माँ को भी खुश करना, बाप को भी खुश करना, फ्रेंड्स को भी खुश करना, इसको भी खुश करना, तो भगवान को तो खुश नहीं कर पाएंगे, अपने भाग्य को तो महान नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऐसे जिनमें पवित्रता के संस्कार हैं और जो बहुत सच्चे मन पूर्वक पवित्र बनना चाहती हैं लेकिन उन पे किसी भी तरह का दबाव है, वो योगी बने, स्वमानधारी बने, बहुत दृढ़ संकल्पधारी बने कि नहीं, यही हमारा मार्ग है, तो माँ बाप भी सहयोग देंगे, ईश्वरीय सहयोग उन्हें मिलेगा। ऐसे ऐसे भी हमारे पास हजारों केसेज हैं कि माँ बाप सहयोगी बन गए, बच्चे की दृढ़ता देखी और कन्विंस करने का तरीका, मैं शादी नहीं करूंगी केवल ये कहने से काम नहीं चलता, मुझे पवित्र बनना है, ये भगवान की इच्छा है, सारा संसार देखो अपवित्रता के मार्ग पर चल रहा है, कहाँ सुखी हैं लोग, उनके आस पड़ोस में रिलेटिव्स में दसियों कहानी होंगी जो लड़कियों ने शादी की और उनका बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे तो भगवान की आज्ञा है कि मैं पवित्र बनूं, मुझे तो परमात्म मिलन का सुख लेना है, आप भी लें। अगर समझाने का तरीका सुंदर होगा जी, ये बताने का तरीका सुंदर होगा कि मैं क्यों पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ, तो माँ बाप सहयोगी अवश्य बनेंगे, भले ही उनकी कठिनाइयों का भी ये निवारण करें तो बिल्कुल इनका मार्ग सरल हो जाएगा।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, सुंदर प्रकाश के लिए आज की तमाम चर्चाएं मैं समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों के लिए संजीवनी का कार्य करेंगी और उन्हें सचमुच एक सुंदर प्रकाश अवश्य मिला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में पवित्रता का मार्ग, जैसे अंत में हम चर्चा कर रहे थे, नवीन तो अवश्य है लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उच्च है। अब तक तो मनुष्यों का साथ लेकर के हमने देखा है, अब हम भगवान का भी तो साथ लेकर के देखें। जब मनुष्य साथी के रूप में साथ आज नहीं दे पा रहा है तो निश्चित रूप से हम ये तो अवश्य सोचें कि परमात्मा, जिसे हम सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, जो सचमुच हमारा साजन है, प्रियतम है, वो तो हमारा साथ अवश्य निभाता ही है। मनुष्यों का साथ हमने देख लिया, इस जीवन एक बार उस पर विश्वास करके देखें कि वो किस प्रकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है। और युवाओं में तो शक्ति होती है कि वो धारा के विपरीत बह कर के चलते हैं। और कहा भी जाता है, किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाएं, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास ना जाएं, धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचें हम, एक नया इतिहास रचें हम। धारा के विपरीत चलने का साहस रखें, एक इतिहास रचने का साहस रखें, निश्चित रूप से आप जो सबल लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सर्वोच्च सत्ता की भी मदद आपको अवश्य मिलेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, नमस्कार।